चाहे 10-20 वर्ष तक आपका प्रवचन चले, मुझे यहीं बैठना है। अपनी योग्यता या अपनी ज्ञानार्थिता को व्यक्त कर रहे हैं, मैं ज्ञान का पिपासु हूं, मैं चाहता हूं ज्ञान। आप ऐसा न समझे कि मैं फंसा हुआ व्यक्ति, मेरा हृदय होता है, अब मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है, इधर फोन करना है, उधर वो करना है, इधर ये करना है, उनको कोई काम नहीं। मैं इसी के लिए जा रहा, अपनी योग्यता को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह से जो ज्ञान लेना चाहता है व्यक्ति, उसको वक्ता के सामने, गुरु के सामने कहना चाहिए, हमें काफी समय है, मेरे पर कोई बोझ नहीं, मैं फ्री हूं, चलो सत्संग। ये व्यक्त कर रहे अहम च योगेश्वरमा पुत्र को विदम मुनीनाम परमन गुरु भई प्रस्तुम प्रवृत्त किणिहारणम तत् साक्षाधारित ज्ञान कला अवतीर्णम। जो साक्षात ज्ञान कला के साथ अवतीर्ण हुए हैं, भगवान कपिल देव से मैं यही पूछने जा रहा है, प्रवृत्त हूं, इसी में मैं लगा हूं, जो आत्म तत्व नेता मुनियों के परम गुरु हैं, नारद सनकादिक आदि के वही गुरु हैं, इष्टदेव हैं, सबको ज्ञान देने वाले जो हैं, मैं सोचा कि उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करूं, तो मैं तो इसी पर लाभ दिया हूं। प्रवृत्त हमने तो छोड़ दिया है राज, मैं इसके लिए तैयार हूं, मेरे पास पूरा समय है। कभी कभी भगवान एक विशेष कला के साथ अवतार लेते हैं, भगवान कपिल देव ज्ञान कला के साथ अवतार लिए, भगवान नृसिंह देव अपने बल के साथ अवतार लिए, भगवान कृष्ण समस्त कलाओं के साथ अवतार लिए, बल, ज्ञान, सौंदर्य, दया, सब कुछ। भगवान कपिल देव ज्ञान कला के साथ अवतीर्ण हुए। गुरु में भगवान की दया की कला थोड़ी सी अवतरित होती है, और कोई कला अवतरित नहीं होती। अगर कोई कहता है कि गुरु भगवान है, तो उसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा इसमें उतरती है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीकृष्ण कृपा मूर्ति। ऐसा नहीं कह सकते कि श्रीकृष्ण बल मूर्ति, श्रीकृष्ण का बल में अवतरित नहीं हुआ, कृष्ण की कृपा अवतरित होती, कृपा तो कृपा मूर्ति कहते हैं। इस विषय में गुरु भगवान है, बाकी अगर किसी विषय में गुरु भगवान नहीं होता, यह स्पष्ट समझने की चीज है। दया के विषय में भगवान की दया का रिप्रेजेंट करता है, जीवों का उद्धार करता है, उसको गुरु कहते हैं। तो भगवान कपिल देव तो साक्षात भगवान थे, उनमें सारी कलाएं थे, लेकिन उन्होंने प्रकाशन किया ज्ञान कला का, और इसीलिए विश्व के सबसे बड़े बड़े मुनि सब उनके शिष्य हुए। तो राजा रहे को मालूम है कि भगवान ज्ञान दान देने के लिए अवतार लिए हैं, तो कहते हैं कि इसी से मैं यहां से जा रहा हूं, और प्रवृत्त प्रवृत्त का अर्थ है कि बस मेरा यही काम है, इसे मैं जा रहा हूं भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो अवतीर्ण हुए हैं इस पृथ्वी पर, और गंगा जी जहां समुद्र से मिलते हैं वो वहां रहते हैं, तो मैं वहां जा रहा हूं। तो मुझे काफी समय है, बिल्कुल फ्री समय है। वास्तविक बात है कि जो व्यक्ति जान जाएगा कि भक्ति और कृष्ण भावना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा स्वार्थ है, तो अन्य कार्यों को छोड़ सकता है। आज के युग में जो सत्संग, कीर्तन, भजन है, वास्तव में वह अन्य कार्यों के चंगुल में है। थोड़ा सा समय मिला तो सुने नहीं बना, इसे वाले उसको करके ही सुने। और राजा कह रहा प्रवृत्त प्रकर्षण या वृत्त, मैंने उसका वर्णन किया है, मैं लगा उनसी, इसलिए आप हमें ज्ञान दीजिए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि सदैव भगवान वही कपिल देव आप हैं, श्रद्धा है उनके हृदय में, इसलिए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सदैव भगवान लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंग विचार अतिशी अतिशी, क्या क्या आप वही भगवान कपिल देव हैं, कृपा करके हमारे सामने अपना प्रकाशन कीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि लोक निरीक्षणार्थम, लोक निरीक्षण करने के लिए, लोगों को व्यवहार को देखने के लिए या उन्हें ज्ञान देने के लिए अव्यक्त लिंग है, आश्रम या वर्ण का कोई चिन्ह व्यक्त नहीं है आपने। कोई नहीं कहेगा कि गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, कि सन्यासी है ना, कुछ न कुछ भेद होता है, सन्यासी में, गृहस्थ में, आजकल के तो सन्यासी के लोग सब एक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ भेद है, कुछ रंग का कपड़ा का, मगर मानसिकता तो एक हो गई। ऐसा देखा गया शास्त्र में कि कलयुग में सभी आश्रम वाले गृहस्थ आश्रम आश्रमी हो जाएगा, नाम रहेगा सन्यास आश्रम, वह ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थ, मतलब सभी गृहस्थ हो जाएंगे। भागवत में लिखा गया दादा पुष्कर, और वर्णों में केवल शूद्र वर्ण रह जाएगा, सभी लोग शूद्र हो जाएंगे और कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो उनका कुछ पता नहीं लग रहा था कि किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, इसलिए अव्यक्त लिंग कहा गया, लिंग चिन्ह कुछ पता नहीं चल रहा है। आप विचरण कर रहे हैं, असल में हमारे जैसा अंध बुद्धि, जिसकी बुद्धि अंधी है, वो जो विश्वों की गति को कैसे समझ सकता है। मैं आपके स्वभाव को नहीं समझा, मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप इतने बड़े भक्त हैं, आप इतने महत्पुरुष हैं, मैं अंधा हूं, मैं नहीं समझ पाया, मैं कैसे योगेश्वरों के भक्तों के व्यवहार को समझ सकता हूं, क्योंकि गृहों में बंद है, मैं तो घर गृहस्थ में पड़ा हुआ एक कीट हूं, एक कीड़ा मकोड़ा जैसा हूं घर में आ सकता हूं, मैं कैसे आपके स्वभाव को समझ सकता था, आप मुझे क्षमा कर। इतना इनके बारे में कुछ करके और इनके हृदय में जो उनके उत्तर से शंका हुई थी, इनका वक्तव्य खंडित करते हुए पूछ रहे हैं। पूछना चाहिए, शिष्य का कर्तव्य होता है, ऐसा नहीं है गुरु जी जो कुछ कहें बस हाँ हाँ और मन में संदेह बना हुआ जो संदेह हो उसको क्लियर कहने चाहिए, आपके प्रवचन से आपकी बात से मेरे हृदय में डाउट। राजा राहुल कहते हैं दृष्ट श्रम कर्म तो आपने भरपूर गंतुर बहुत पश्चान मन में, आपने कहा कि मुझे कोई भार नहीं महसूस हुआ, मैं नहीं ढोया हूं, मैं नहीं थका हूं, लेकिन मैं अपने से अनुमान करता हूं जब मैं युद्ध किया हूं या कोई चीज ढोया हूं धानों से या बाढ़ या और चीज, तो हमको थकावट हुई है, मैं रास्ता चला हूं तो मुझे थकावट हुई है, तो मैं अपने से ही अनुमान में मैं अपने से ही अनुमान करता हूं कि आप भी जब भार लेकर के चले हो और रास्ता चले हो तो आपको भी थकावट हुई होगी। आप देखिए एक देह हमने आप बौद्ध और एक देह से मुख व्यक्ति, दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन ये कह रहे हैं हम अपने से अनुमान करते हैं कि आपको भी थकावट हुई होगी, मेरे अपने से अनुमान कर रहे हैं, तुम किस धरातल पर हो वो किस धरातल पर है अपने से अनुमान कर रहे हैं। लेकिन फिर पूछना इनका बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आपको भी थकावट नहीं होगी और आपको भी भार महसूस हुआ होगा क्योंकि आप रास्ता चले और आप कहते हैं कि मैं रास्ता नहीं चला हूं, मैं थका नहीं हूं, तो इस विषय में मेरी बुद्धि अंधेरी हो रही है। ये कहते बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। और दूसरा आपने कहा कि ये जो स्वामी और सेवक का व्यवहार है भेद है, यह केवल व्यवहार मात्र है, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, इस विषय में मुझे संदेह है। जैसे हम जल में घड़ा में जल लाते हैं, तो घड़ा है तो उसमें हम जल उठा लेते हैं, जो घड़ा नहीं रहेगा तो हम जल नहीं उठा पाएंगे। हिमालय में सपना में हम घड़ा देखे तो सपना में देखे हुए घड़ा से यह पानी तो भरेंगे नहीं है ना, सपना में बहुत चीज देखते हैं, सपना में हम पैसा देखे नोट देखे तो उससे तो कोई वस्तु खरीद नहीं लेंगे, तो हम देखा जा रहा है कुछ स्वामी है सेवक है ब्राह्मण है क्षत्रिय है या नीर भक्त है प्रेसिडेंट है जेबीसी है, ये व्यवहार हम देख रहे हैं और इसका प्रभाव भी देख रहा है कि बुरा कर्म करता है तो नरक जाना पड़ता है, अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग मिलता है, ये होता है वो होता है, तो हम इसको झूठा कैसे मानेंगे, झूठे से कैसे सत्य की प्राप्ति हो रही है। अगर व्यवहार झूठा है सत्य नहीं है तो इसका प्रभाव क्यों देखा रहा जा रहा है, सुख मिलना दुख मिलना और सब होना, तो जब यह सत्य है तब तो सब फल प्राप्त हो रहे हैं। जैसे अगर झूठा घड़ा है तो उससे उद आनयन आदि अभाव पानी लाभ हो सकते हैं, झूठे घड़े से पानी नहीं लाया जा सकता है। तो जब व्यवहार झूठा है तो उसका फल सत्य क्यों हो रहा है? ये मेरी शंका। ये कोई राजा नहीं है, नौकर नहीं है, ये नहीं है तो, लेकिन फिर भी शासन देखा जाता है, मारपीट या नियमन में रखना, बेटा है, बाप है, स्त्री है, पुरुष है, ये क्या बिल्कुल झूठा है? ये बात मैं समझ नहीं रहा। ये झूठा है तो फिर इसका मतलब नरक स्वर्ग सब झूठा है? ये तो बात है नहीं। ये संसार सत्य है, आप कैसे इसको झूठ कह सकते हैं? जब भरत जी ये नहीं कह रहे थे कि संसार बिल्कुल झूठा, संसार सत्य है, लेकिन हम जो मन में मानते हैं वह नहीं है। जैसे एक बच्चा है, उसका शरीर सत्य है, वास्तव में वह है, लेकिन हम जो मानते हैं कि वो मेरा बेटा है, यह झूठा है। जैसे रज्जू है, रस्सी है, रस्सी सत्य है, लेकिन हम रस्सी में यदि सर्प बुद्धि कर लेते हैं तो यह सर्प बुद्धि मिथ्या है। राजा भरत जी के कहने का आशय यह था, लेकिन राजा समझ नहीं पाए। राजा ने यह समझा कि ये कह रहे हैं कि संसार पूरा झूठा है, व्यवहार झूठा है, या कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन राजा मैं हूं यह मान्यता भर है। वास्तव में राजा का शरीर सही है, लेकिन लिख दिया गया बाद में राजा। जैसे हम घर बनाते हैं तो किसी पर लिख देते हैं और लैट्रिन, उसको क्या सब कहते हैं? दूसरा सर कहते हैं ना, लिखते रहते हैं, मुझे याद नहीं पड़ा, बहुत प्रचलित सब टॉयलेट, एक टॉयलेट लिख देते हैं, किसी में रेस्ट रूम लिख देते हैं, और अमेरिका में रेस्ट रूम मतलब टॉयलेट, उधर मैं देखा सब लिखा हुआ था रेस्ट रूम एयरपोर्ट पर और जगह, मैं आश्चर्यचकित हो गया। वो वास्तव में वास्तविक आराम वही मिलता है, शौच होकर के नहा करके जितना आराम मिलता है उतना सोने से नहीं मिलता है, रेस्ट रूम तो वही है। तो घर बनाया जाता है, बाद में लिख दिया जाता है, उसका सेप कुछ बदल करके, वही ईंट पत्थर सीमेंट सब वही लगता है। तो पंच तत्वों से शरीर बना है, किसी को कह दिया गया राजा है, कोई नौकर है, कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, कोई कुछ है, यह मान्यता मात्र है वास्तव में, इसमें सच्चाई नहीं है। जब ही शरीर छूटता है बस समाप्त, स्वप्न टूटने जैसा सारा संबंध, सारी मान्यता, न व्यक्ति रहता है न फिर मान्यता रहती है, यह समाप्त हो जाता है। तो बहुत सुंदर जिज्ञासा है राजा रघुगढ़ की, बहुत सुंदर, और भी वे तर्क देंगे कि शरीर से आत्मा जरूर प्रभावित होता है, भोजन बनाने का उदाहरण देंगे, अग्नि से बतलौही गर्म होता है, बतलौही से दूध गर्म होता है, दूध से चावल गर्म होता है, चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। जब आत्मा इसी शरीर में रह रहा है तो शरीर से प्रभावित होगा ही, ये कह रहे हैं, गलत उदाहरण दिए, अप्राकृत वस्तु के लिए प्राकृत उदाहरण दिए। इसका बहुत सुंदर विवेचन जड़भरत जी कर रहे हैं। ये सब जिज्ञासाएं समाज की जिज्ञासा है वास्तव में, तो संसार के साथ हमारा आत्मा का क्या संबंध है, नहीं संबंध है, क्या है। तो मैं पुनः इस प्रसंग को दृष्ट श्रम कर्म तो आत्मा में यहां से फिर चालू करूंगा, क्योंकि इसको और स्पष्ट करना है। ये राजा रघुगढ़ कहते हैं कि समूल इष्ट व्यवहार मार्ग, हमारे समय से तो जो व्यवहार मार्ग है यह समूल है, इसके पीछे भी कोई कारण है, ये सत्य है और इष्ट है, यह जरूरी है, तो कारण ये जरूरी है, ये हमारे समय से आवश्यक है। इस तरह का आग्रह हो रहा है एक सत्संगी के मन में, हरे कृष्ण जय श्री राम। श्रम कर्म तो आत्मनो वही भर्तुर्गंतुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दानैनाद्य भावः स
सबलिष्ट व्यवहार मार्ग स्थान्यतापोषिताप तत्तापतस्तंडलगर्भगंधि देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संस्कृतिः पुरुषस्यानुरोधात् शास्त्राभिगुप्ता लुपतिः प्रजानाम् यः किं करो वै नपिनष्टिपिष्टम् स्वधर्ममाराधनमाच्युतस्य जदीयमाना विजहात्य गौघम् एक एक श्लोक अपने मन का संदेह या अनादि काल से जो विचार उनके मन में धसा हुआ था उसको जलभरत जी के सामने रख रहे हैं। वे जा रहे थे यही पूछने के लिए किन्हारण यह अरणम किम। भगवान कपिल देव से पूछने जा रहे थे कि इस संसार में जीव का आश्रय क्या है, क्या उसे करना चाहिए, किसकी शरण लेनी चाहिए। तो एक योग्य अधिकारी थे, विद्वान थे वास्तव में। जब वक्ता और श्रोता लगभग एक समान के होते हैं तब तत्व तो निरूपण में आनंद आता है। तो वैसे अधिकारी थे, तो उनके मन में जो शंका है और खास करके जब भरत जी ने जो उत्तर दिया तो कुछ ऐसी बात उन्होंने कह दिया है कि ये व्यवहार जो है बेकार व्यर्थ है, इसका कोई आधार नहीं है। ये दो दिन का टेम्पररी संबंध है, व्यवहार है, वास्तविक परमार्थिक सत्ता इसकी नहीं है। दो तरह का सत्य इस संसार में है, एक को पारमार्थिक सत्य कहते हैं और एक को व्यवहारिक सत्य कहते हैं। पारमार्थिक सत्य का अर्थ होता है कि जीव ईश्वर का नित्य अंश है और ईश्वर से, भगवान से प्रेम करना ही उसका एकमात्र काम है, धर्म है, और उस प्रेम को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य है वही एकमात्र उसका कार्य है और कुछ भी नहीं। सवई पुनसन परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षत, ये है परमार्थिक सत्य। इसलिए भगवान का नाम जपना, भागवत पढ़ना, प्रणाम करना, प्रसाद खाना, यही सत्य है, ये परमार्थ है। लेकिन जब तक शरीर में हम हैं तब तक एक और सत्य भी निभाना पड़ता है, उसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य। वास्तव में कोई भी जीव देह नहीं है, लेकिन देह में जब तक है तब तक व्यवहार निभाना है। जैसे मान लीजिए किसी को स्त्री का देह मिला है तो स्त्री का आचरण उसे करना ही होगा। कोई कहेगा नहीं, हम सभी कृष्ण के दास हैं इसीलिए सब एक काम करेंगे। जैसे आजकल मैट्रियल धरातल पर लोग ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि स्त्रियों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब स्त्रीय पुलिस में भी भर्ती होने लगे, आप बताइए, तब तो निश्चित हार है। मिलिट्री में भी कुछ दिन में भर्ती करेंगे, चाहे करते होंगे। तो परमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य है कि हम किसी के पिता हैं, कोई हमारा पुत्र है, हम राजा हैं, कोई हमारा सेवक है, इसको निभाना है। यह भी भगवान का उपदेश है वेदों में। परंतु इतना सावधान रहना चाहिए कि व्यवहारिक शब्द पारमार्थिक सत्य को न दबाने पाए। पारमार्थिक सत्य यदि व्यवहारिक सत्य को दबा देता है तो ठीक है, वो चलेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो भगवान धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं वो है व्यवहारिक सत्य। लेकिन व्यवहारिक सत्य को परमार्थ में विकास करने के लिए छोड़ा जा सकता है, परंतु परमार्थ को कुचल करके व्यवहार कुशल होना ठीक नहीं है। सांसारिक दृष्टि से बहुत प्रवीण होना, कुशल होना यह ठीक नहीं। यदि परमार्थ कुचला जा रहा है, यदि परमार्थ सही सही चल रहा है, भगवान से प्रेम है, भक्ति हो रही है, और इसके साथ ही साथ धन कमाना, बंधु बांधवों से, अपने इष्ट मित्रों से व्यवहार अच्छा रखना, अगर दोनों चले तो बहुत अच्छा है। और वास्तव में जो व्यवहारिक सत्य है उसकी स्थापना भगवान ने परमार्थ को बढ़ाने के लिए किया, उसको दबाने के लिए नहीं। स्त्री पुरुष का संबंध है या पिता पुत्र का, मामा भांजा का, जो भी है, राजा प्रजा इस संसार में भगवान ने बनाया है वास्तव में। और बना करके उन्होंने यही कहा मानवों से कि तुम लोग इसके द्वारा मेरे पास आने का प्रयास करो, अकेले तुम इस संसार में जी नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे कि मैं तो कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण का दास हूं, इसीलिए हमें और किससे क्या मतलब है, जीव आनंदमय है, जीवित रहेगा और अकेले बैठ जाए कहीं, तो दो चार दिन के बाद यदि दरवाजा खोला जाएगा तो उसको टांग कर अस्पताल ले जाना पड़ेगा, है कि नहीं। वो परमार्थिक सत्ता में रह नहीं पाएगा, परमार्थिक सत्य में रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसको शरीर ऐसा मिला है जो स्वयं ही परमार्थ नहीं है, यह जड़ शरीर है। इसमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बीमारी होगी, भय होगा, इसलिए भगवान ने मनुष्यों को संबंध में बांधा। तुम संबंध जोड़ो और एक दूसरे का हेल्प करो। जैसे मूल संबंध है स्त्री पुरुष का, एक नारी सहज ही आश्रय चाहती है, बिना आश्रय के नहीं रह सकती, नहीं ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जीवन भर रहना हो लेकिन प्रेम हो, स्नेह हो, वो सेवा करे और वो उसका पोषण करे, दोनों एक दूसरे को। अब स्वर्ग से भी ज्यादा तो लोग यहां सुख मान रहे हैं, इसीलिए तो स्वर्ग नहीं जाना चाहते। वो किसी को इन्विटेशन भगवान इंद्र का आवे कि तुम आओ स्वर्ग लेकिन यहां शरीर छोड़कर आओ, कोई नहीं जाएगा। और यहां तक कि कोई कहे कि शरीर के साथ ही आओ परिवार छोड़ करके तो नहीं जाएगा, वो कहेगा हमारे पूरे परिवार को ले चलो तब जाऊंगा। वो भी डर होगा कि कहीं आकाश में दुर्घटना न हो जाए, पता नहीं क्या होगा। लेकिन शायद यहां वीजा पासपोर्ट टिकट सब दे करके कोई कहे कि अमेरिका चलो तो बस चलो, बच्चा हो जाएगा। जो मान लिया है, जो जहां मान लिया है वहीं सुख है, मन में सुख है वास्तव में। सुख न स्वर्ग में है, न यहां है, न वहां है, कहीं नहीं है। जब आत्मा की वृत्ति होती है, आत्मा का फेज, आत्मा की अवस्था दूसरे रूप में, तो इसको सुख कहते हैं। तो आत्मा स्प्रिट है, चिदघन है, और सच्चिदानंद घन भगवान से जब उसका संपर्क होता है तब आत्मा को वास्तविक सुख प्राप्त होता है, उसका सुख उभर जाता है। बाकी विषयों के संसर्ग से जो सुख होता है उसको तो भगवान दुख जन कहे हैं, यही संस्पर्श का भोग है दुख जो मेरे होते आतंत वंत कहूं तो मत सुरंतो बुधर, उसमें विद्वान नहीं रमता है, मूर्ख लोग रमते हैं, विषयों का संयोग करते हैं इंद्रियों से, विद्वान नहीं रमते। तो यहां पर बताई जा रही बात कि स्वर्गीय सुख है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में उक्तियां हैं उन वेदों में भी सत्य शुद्ध तत्ववाद नहीं है। जब वेद की उक्तियों में तत्ववाद नहीं है तो अखबार की उक्तियों में क्या रहेगा, लोक में क्या रहेगा, बताइए। लोक में ये धारणा करो, इसे पढ़ो, ये पढ़ाई करो, ये प्राप्त करो, ये प्राप्त करो। वेद का कर्मकांड तो करते हैं कि स्वर्ग मिले, और यहां पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नौकरी मिले, बिजनेस मिले, इसके लिए किया जाता है। और राजा प्रजा व्यवहार बटा हुआ है, सब जगह कारपोरेशन है, सब जगह व्यवस्था है, उसमें डिपार्ट बटे हुए हैं, ये कर्तव्य वो कर्तव्य, ये कर्तव्य वो कर्तव्य, सब अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते, और ये कहते हैं हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कभी कभी नौकरी करने वाले सरकारी नौकरी करने वाले लोग कहते हैं कि आप लोग साधु हैं लेकिन ये ठीक नहीं है, हम लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हमसे एक आदमी कहा कि आप लोग तो भीरू हैं, पलायन कर गए, समाज पढ़ाया लिखाया जिलाया खिलाया और समाज सेवा का अवसर आया तो आप लोग भाग गए, पलायन कर गए। ये तो डरपोक और बेहचोर का काम है, पलायन कर गए। जरूर हम लोग पलायन किए हैं लेकिन पलायन करके अपने बंधु के पास भागे, कृष्ण के तरफ, और इसके लिए पलायन करना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं घर में भी आदमी रहे तब भी कुछ देर तक तो ठाकुर जी के कमरे में उसको बैठ करके जिम्मेवारी से पलायन करना ही चाहिए क्योंकि अच्छा बाद में देखेंगे अभी। और कभी कभी मैं देखा हूं कोई कोई भक्त, मैं अमेरिका में खासकर देखा, फोन भी नीचे रख देते जप के समय पूजा के समय, फोन बड़ा भारी संवाद आएगा, थोड़े हटाओ फोन एक घंटे के लिए, नहीं सुनेंगे। ये कोई जीवन है कि हम जब करें बैठे रहें और एक एक मिनट में काम के पास लगाए रखें, क्या हमारा चित्त होगा, हम कैसे भगवान में मन को लगा पाए। जब कोई बोल रहा है तो कोई वैष्णव गोलोक से बोल रहा है क्या, गोलोक से संवाद आ गया तो खट से उठाएंगे, कुछ देर तक तो नहीं। और इस काम में बहुत सुंदर व्यवस्था है, 9 बजे तक ये सब कोई काम नहीं, यहीं पर देखा जाता है। इतना सुंदर नियम कहीं नहीं है, 9 बजे 10 बजे के बाद जो भी हाय हुई करना हो करो, लेकिन 9 बजे तक केवल कृष्ण के साथ रहना है। देर से जप करना हो, 9 बजे तक जप करो, भागवत सुनो, प्रसाद, बल्कि 10 बजे तक, बम में तो 10 बजे तक था, वृंदावन में 9 बजे तक, यहां 10 बजे ही जाता है सबको ऑफिस आते आते, 9 बजे प्रसाद लेंगे तो 10 तो बज ही आता। बहुत सुंदर नियम है वास्तव। तो इस प्रकार तब तो वाद वेदों में भी नहीं है, तो फिर राजा रहोगण तर्क देते हैं, तर्क दिए होंगे तभी श्लोक आ रहे हैं, तो यहां ये नहीं दिखाई पड़ रहा है तर्क, लेकिन भगवान दीपिका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी प्रत्येक श्लोक पर तर्क उठाते गए। ये कहते हैं तर्क में कि यदि वेदों के वाक्यों में तत्ववाद नहीं है और कर्म करना बेकार है तो वेदांत सुनने वाले वेद पढ़ने वाले लोग भी क्यों कर्म करते हुए देखे जाते हैं, वो भी राजा का कर्म करते हैं या और जो सांसारिक व्यवहार है वो भी निभाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, या वे भी कर्म करते हुए देखे जाते हैं, कर्मकांड करते हुए देखे जाते हैं, वो भी स्वर्ग चाहते हैं वेद पढ़ने वाले लोग। तो इसका उत्तर जगद्धरा जी देते हैं कि नतस्य तत्व ग्रहणा साक्षात बड़ी असीर की वाचा समासन स्वप्न निरुक्त्या गृहणे विसाक्षम न च सहैया निरूपम स्वयं से। बहुत बलवान वचन बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति के मन में स्वयं ही स्वयं संसारिक गर्भस्थ उचित सुख स्वप्न के सुख जैसा है नहीं लगने लगता है, उसको वेद का वाक्य भी तत्व ग्रहण कराने में समर्थ नहीं, वो वेद पढ़े या सुने उसे कोई लाभ नहीं। सबसे पहले वेद की शिक्षा को लेने की योग्यता ये है कि अपने आप ही बिना किसी के बताए ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस जगत का जो सुख है वो है तुच्छ, अपने आप आ जाना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। और किस तरह से है विनाशी है, मतलब नश्वर है, थोड़े काल के लिए रहने वाला है, वास्तविक सुख नहीं है, जैसे सपना, स्वप्न मृत्यु गृह में भी सौख्य, गृह में भी कहते हैं गृहस्थ को, तो गृहस्थों का जो सुख है इस संसार में उसको गृह में भी सौख्य कहते हैं, गृह में भी सौख्य। ऐसी धारणा है संसार में कि जो सन्यासी हैं विरक्त हैं वो वास्तव में कहीं के नहीं रहे, वास्तविक सुख ले रहे हैं गृहस्थ, उनके सुख को गृह में भी स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में भी वो सुख है तो स्वर्ग में भी सन्यासी ब्रह्मचारी का कोई सुख नहीं है, वहां भी गृहस्थों का सुख है, उस गृह में भी सौख्य करते हैं। तो गृह में भी सुख जो है वह तुच्छ है, इस बात को समझ लेना आवश्यक है। बिना किसी के बताए उस तरह से तुच्छ समझ लेना चाहिए जैसे स्वप्न निरुक्त्य, जैसे स्वप्न में कोई गृह का सुख देख रहा है। मान लीजिए स्वप्न में किसी का विवाह हुआ, देख रहा है कि सपने में मेरा विवाह हुआ, और फिर स्त्री सुख भी पा रहा है, घर गृहस्थी बनाया सपना में, बेटा उत्पन्न किया, सब कुछ किया, लेकिन नींद टूटने के बाद सब जैसे स्वप्न में कोई गृह का सुख देख रहा है। मान लीजिए स्वप्न में किसी का विवाह हुआ, देख रहा है सपने में मेरा विवाह हुआ, और फिर स्त्री सुख भी पा रहा है, घर गृहस्थी बनाया सपना में, बेटा उत्पन्न किया, सब कुछ किया, लेकिन नींद टूटने के बाद सब खत्म। तो जैसे सपना तुच्छ है या क्षणिक है, इसको बताने के लिए दूसरे की सहायता की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? जो सपना देखता है वो अपने आप समझ जाएगा कि आप सपना देखे हैं तो सपना का सुख कैसा है, या कितना देर रहा, कितना तुच्छ है या असत्य है, दूसरे तो बताएगा नहीं। सपना आप देखे हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं, और ये क्षणिक है, कुछ नहीं है, वास्तव में सुख था ही नहीं। तो इस तरह से जैसे सपना के सुख को मनुष्य समझ जाता है कि क्षणिक है, नश्वान है, उसी तरह से जो लोग गृहस्थी के सुख को तुच्छ नहीं समझ गए हैं, स्वर्ग सुख को चाहे यहां के सुख को, तो उनको भक्ति सिखाने में या तत्व ग्रहणा या तत्व ग्रहण कराने में साक्षात वेद के श्रेष्ठ वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक अपने से वैराग्य नहीं होगा तब तक वेद भी सहायता नहीं कर सकता, वेद तो यही रहेगा। इसको चारक पंडित कहते हैं कि जस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं, लोचना भेद ही न से दर्पण किं करोषि। जिसके पास स्वयं ही बुद्धि नहीं है समझने के सत्य को, तो शास्त्र उसके लिए क्या करेगा? जो दोनों आंखों से अंधा है तो उसके लिए फर्स्ट क्लास का दर्पण क्या करेगा? दर्पण उसकी सहायता करता है जिसके पास आंख है कि नहीं? बाजार में इतने दर्पण मिल रहे हैं, मिरर मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी अंधा व्यक्ति उसको नहीं खरीदेगा, खरीद करेगा। तो जिसके पास कुछ भी बुद्धि नहीं है वो गीता सुनकर क्या करेगा, या भागवत भी सुनकर तो क्या करेगा? अपने पास बुद्धि चाहिए कि वास्तव में संसार का सुख व्यर्थ है, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, अपना कोई लाभ नहीं है, यह बात स्वयं समझ में आनी चाहिए बिना किसी के ज्ञान दिए। और तब वह व्यक्ति भागवत पढ़ेगा, सुनेगा, गुरुजनों का संग करेगा, वेद पढ़ेगा, तो उसे बहुत लाभ होगा। लेकिन जब हम वेद पढ़ेंगे और यही मान करके कि संसार ही सत्य है, तब तो वेद का अर्थ भी वैसा ही समझ में आएगा। अपनी पहले धारणा बदल लेनी चाहिए, देखिए किस तरह से फैक्ट बोल रहे हैं। नतस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात बड़ी असी रूपी वाच समासन, वाच बड़ी असी वाच, बड़ी असी कहते हैं वरिष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वाच। तो संसार में जितने भी उपदेश हैं, जितने भी वाक्य हैं, उनमें सबसे बढ़कर के वेद वाक्य है, इसलिए वेद को बड़ी असी वाच कहते हैं। वो भगवान का साक्षात उपदेश है, वेद साक्षात भगवान का उपदेश है, वेदांत कृत वेद विदेह, इसीलिए उसको बरियसी कह रहे हैं।
जीवन को तत्व में लगाने के लिए, भगवान की तरफ लगाने के लिए वेद का उपदेश हुआ, लेकिन वह वेद वाक्य भी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता है उस व्यक्ति की जिसको स्वयं ही संसार का सुख है नहीं लग रहा। आजकल सबसे बड़ी समस्या समाज में यही है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि महाराज इतना प्रवचन चल रहा है दुनिया में, इतना मंदिर बना है और मंदिरों में लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है, फिर भी लोगों में कोई भी शुद्धि क्यों नहीं है, वैराग्य क्यों नहीं है, विश्वास से भगवान में प्रेम क्यों नहीं बढ़ता। यहां तक कि जो प्रवचन करने वाले वक्ता है वो खुद ही प्रेमी नहीं है भगवान, वो प्रवचन करके और वो अर्थ प्रेमी होते हैं, तो जो खुद अर्थ प्रेमी है वो दूसरों को कैसे भगवान को दे पाएगा। वो साधन के रूप में शास्त्र को मान लिया है, ये हमारा साधन है। साध्य क्या है? पैसा। अब बताइए, ये शास्त्र पैसा कमाने के लिए है, ये मुक्ति के लिए है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जितने भी मुक्ति के साधन हैं वे पाखंडियों के लिए या अजितेंद्रियों के लिए जीविका का साधन हो जाते, उसको जीविका चलाते, उसका जाप, उसकी शास्त्र व्याख्या या उसका मान, एकांतवास, जो कुछ भी होता है वो अर्थ के लिए होता है, जीने के। ये जीने के लिए ये सब जप आदि है, मुक्ति के लिए है। लेकिन जो पहले से ही उसकी धारणा हो जाती है कि मैं शास्त्र पढ़ूं और जीविका करूं पैसा कमाऊं, तो वह व्यक्ति कभी भी शुद्ध प्रवचन नहीं कर सकता है और उसके प्रवचन का कोई असर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। शुरू में देखने में लगेगा कुछ असर हो रहा है, लेकिन जो स्वयं ही कुछ कहकर के पैसा चाह रहा है वह तत्ववाद को, भगवान की भक्ति को स्वयं ही तुच्छ सिद्ध कर रहा है। क्योंकि वास्तविक यदि वक्ता है तो इसका मतलब वो कृष्ण को दे रहा है, वो शास्त्र के शब्दों में कृष्ण को दे रहा है, तो इतना रेयर बहुमूल्य जो कृष्ण को दे रहा है उसके बदले में वो पैसा चाहेगा। कभी उसकी इच्छा होगी पैसे की? अगर पैसे की इच्छा हो रही है तो वो तो मूंगफली बेच करके भी कोई पैसा कमा लेता, पान की गुमटी खोल करके भी पैसा कमा लेता, और भी हजारों जीविका के उपाय हो करके कमा लेते, लेकिन भक्ति करके और शास्त्र की व्याख्या करके नाम जप करके कीर्तन करके हम सोचे कि हमको पैसा मिले, तो यह तो पतन है वास्तव में। ऐसे लोग दुनिया का कोई हित नहीं कर सकते, वो तो अपना ही हित नहीं किए हैं, दूसरे का क्या करेंगे। जिनके अंदर अभी वासना रह गई पैसे के और सांसारिक सुख की, वो अपना उद्धार नहीं किए हैं, दूसरे का भी नहीं कर सकते हैं, और दूसरा उनका उद्धार करना भी चाहे तो उनका उद्धार नहीं हो सकता। यही बात कह रहे हैं, जिसको स्वयं ही गृहस्थी का सुख है नहीं लग रहा है, इंद्रियों का भोग जिसको तुच्छ नहीं लग रहा है स्वप्न की तरह, उसको वेद के वाक्य भी तत्व ग्रहण कराने में समर्थ नहीं हो सकते। उसके लिए वेदांत, भगवान, गुरु, वैष्णव सब बेकार हो जाए, सब मिल करके भी उसको भक्ति नहीं सिखा पाएंगे। जिसके मन में बात बैठी हुई है कि वास्तविक सार है भोग, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। पहले अपने को योग्य बनाना पड़ेगा, यदि हम वेद के वाक्यों से हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें अपने को योग्य बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे। योग्य बनना पड़ता है किसी वस्तु को। प्रभुपाद जी कहा करते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनो तब इच्छा कर। तो बिना योग्य बने हम इच्छा करेंगे तो इच्छा पूरी होगी नहीं, तो योग्य बनना पड़ता है। तो पहली योग्यता है कि व्यक्ति को बिना सिखाए अपने आप संसार को तुच्छ देखना चाहिए। मशीन की तरह किसी के हृदय में भरा जाए कि तुम समझो कि संसार तुच्छ है, ये कोई ये तो बायो को ज्ञान दिया जा रहा है। वो कहीं दूसरों को मरते हुए वो नहीं देख रहा है, या घर गृहस्थी में क्या सुख है, विषयों का संजोग इंद्रियों से होता है, देखना खाना पीना और अपना सब कुछ छोड़कर के फिर मर जाता है, दूसरे शरीर में जाएगा, उसमें क्या सुख है, क्या सुख है परिवार में घूमने में या बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने में और संसारिक ऐसी हवा और सब कोई सुख है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक किसी को यह सुख तुच्छ नहीं लग रहा है उसके लिए वेद के सारे साधन पर तो स्वप्न निरुक्त गृह में भी सौख्यम न जस है अनंतम स्वयं सात। स्वप्न में जो हम सुख देखते हैं वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। घर गृहस्थी बनाने का सुख या प्राइम मिनिस्टर बनने का सुख, सपना में प्राइम मिनिस्टर बन गए कितना देर रहेंगे, नींद खुलते ही सारा संसद भंग हो जाएगा, है कि नहीं। शायद दीपक जो बांटते थे अपने अपने मंत्रियों को भी गायब हो जाएगा और जहां है वहीं गायब। सपना में प्राइम मिनिस्टर बना तो जैसे अपने आप समझ में आ गया अरे तुच्छ का क्षण स्थायी था और वास्तव में नहीं था। इस तरह से सुख संसार का वास्तव में है नहीं और भास भी रहा है तो वो भी थोड़े काल के लिए भासेगा, हमेशा नहीं रहेगा। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए अपना दिमाग लगा करके कि संसार का भोग तुच्छ, तब उसको तत्व ग्रहण कराया जा सकता है। यह बात जब भरत जी इसलिए कह रहे हैं कि राजा बहुबान ने कहा कि वेद पढ़ने वाले लोग भी तो कर्मकांड में रहते हैं, तो इसका उत्तर ये देते हैं कि पहले से ही उनके मन में वैराग्य नहीं रहता, इसलिए वेद पढ़ करके भी वो उसी तरफ ढलते हैं, संसार की तरफ ढलते हैं। वास्तविकता है संसार में देखिए जितनी भी संस्थाएं हैं संसार में, जितना परिवार है सब मिल करके अलग अलग मतलब आपस में परिवार मिलकर संघ मिलकर के पूरा प्रयास कर रहा है। किस लिए? गृह में भी सौख्य। जितने स्कूल में लड़के पढ़ रहे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं लड़के, वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मुक्ति के लिए नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है मुक्ति के, कुछ जीविका के लिए, कमाने के लिए, बाद में अच्छा गृहस्थ बनने के लिए, सुख भोग के लिए उनकी यही योजना है। आगे हम सुख भोगों में पढ़ लेते हैं, सारा संसार इसी में है, सारा मानव समुदाय, और मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं। स्कूल कॉलेज में एक भी प्रोफेसर भक्त नहीं है जो लोगों को सिखाया कि ठीक है एक एक मानव रूप जप भी किया करो, ऐसा सिखाने वाला कोई नहीं। पुरस्कार के भक्त लोग कुछ करते हैं तो लगता है समाज में जैसे जबरदस्ती कर रहे हो सरकार के साथ और सबके साथ। कभी कभी लोग कह देते हैं हाँ सेक्युलर स्टेट है, इसमें आप लोग ये क्या दे रहे हो, सेक्युलर स्टेट है मतलब दुख पाने का स्टेट है, ये भगवान के लिए नहीं है, भगवान का संबंध तो सबके साथ। तो अपने आप अध्यात्म विकास चाहने वालों को अपने आप ये साक्षात्कार करना चाहिए, संसार का सुख है या हम धारणा करके भक्ति करेंगे तब विकास करेंगे। यदि मन संसार के लिए लोलुप रहेगा तो भक्ति में उत्साह भी नहीं रहेगा और हम साधन कर भी नहीं पाएंगे। उत्साह भगवान के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से प्रपंच को असत्य कहा है, जो भी संसार है वास्तव में असत्य है। असत्य का अर्थ मिथ्या नहीं होता है, असत्य का अर्थ होता है जिस रूप में आज है कल नहीं रहेगा, परिवर्तनशील। जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है, वो सुख नहीं है। सुख वो है जो सदा एक समान रहे। तो प्रपंच को असत्य कह करके और संसार को असत्य कह रहे हैं, प्रपंच और संसार में अंतर है। ये संस्कृत के शब्द है। संसार का अर्थ है जीव के सुख दुख हर्ष अमर्ष की भावना। जीव कभी मानता है उसको आनंद मिल रहा है, कभी मानता है दुख हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अपना है पराया है, इसको संसार कहते हैं। और प्रपंच कहते हैं इन सब वस्तुओं को, जो वस्तुएं हम देख रहे हैं उसको प्रपंच कहते हैं। और संसार जो जीव की चेतना प्रभावित होते रहती है उसको संसार कहते हैं। जैसे शोक होना, मोह होना, राग होना, लोभ होना, क्रोध होना, ये सब संसार है, इसको संसार कहते हैं। तो और संसार के मिथ्यात्व का वर्णन कर रहा है, वो लगातार बोलने से, फिलोसफिकल टॉपिक होने से जैसा लग रहा है जैसे मैं ज्यादा बोल रहा हूं। अब सुनिए किस तरह से जीव का जन्म मरा और शोक हर्ष सब व्यर्थ है। वास्तव में उसकी कोई क्षति नहीं हो रही है जिससे वो दुखी हो, और वास्तव में उसे कुछ मिल नहीं रहा है जिससे वो सुखी हो। उसका सुख दुख का जो अनुभव है वो सब मिथ्या है, यहां अब बता रहे हैं। अथवा राजा रघुवर पूछते हैं कि ननु एवं सभी प्रबोधिता अपनी प्रह सर्वे जना वैश्विके सुखे व प्रवर्तमान कथम दर्शन। जब यह सत्य है और तो प्रबोधित होने पर भी, ज्ञान दिए जाने पर भी सभी लोग विषय सुख में ही क्यों लगे रहते हैं? प्रबोध दिया जाता है फिर भी लोग विषय सुख के लिए ही क्यों प्रयास करते हैं, क्यों लगे रहते हैं? तो इसका उत्तर दे रहे, यावन मनोरजसा पुरुषस्य सत्वे नवा तमसा वानरुद्धम चेतो भिरा कृति भिरा तनोति निरंकुशं कुशलं चेतरम। पुरुषस्य मन, जब भाई जी कह रहे हैं कि जो पुरुष का मन है, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के साथ जो मन लगा हुआ है, यह मन ही उसके संसार बंधन का कारण है। वही इसको हर्ष विषाद आदि में डालता रहता है और वही इसको शरीर की प्राप्ति कराता है या छुड़ाता है, जो भी करता है। तो आत्मा मन मूल कारण है, कारण पुरुषस्य मन, पुरुष का मन जब तक रजसा तमसा व सत्वेन, जब तक रजोगुण से, तमोगुण से या सत्वगुण से अनुरुद्धम, जब तक विद्ध रहता है, उपरक्त रहता है, प्रभावित रहता है, तावत तब तक यह मन निरंकुश कर्म करता रहता है। निरंकुश का अर्थ वेद मर्यादा से ही निरंकुश उच्छृंखल होकर कर्म करता है। किनके साथ कर्म करता है? चेतो भी, चेतो भी बहुत सी चेतनाएं हैं, मतलब ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियों को चेता करते, ज्ञानेन्द्रियों से काम करता है, और आकृति भी कर्मेन्द्रियों से काम करता है, और कुशलम इतरम दोनों प्रकार का कार्य करता है, पाप और पुण्य, धर्म और धर्म करता रहता है, और आत्मोति मतलब करता ही रहता है। जब तक पुरुष का मन रजोगुण तमोगुण या सत्वगुण से विद्ध रहता है तब तक वह निरंकुश कर्म करता रहता है, धर्म या अधर्म करता रहता है, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा और कर्मेन्द्रियों द्वारा। मन स्वयं मैनेजर की तरह बैठा रहता है, काम करती हैं इंद्रियां, लेकिन मूल कारण यही है। तो मन जब तक तमोगुण सत्वगुण रजोगुण से विद्ध रहता है, इसका अर्थ यह है, गीता के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए। 14वें अध्याय, सत्वगुण का अर्थ होता है कि जीव अपने को ज्ञानी मानता है, मनुष्य खास करके, और सुखी मानता है, सत्वगुण का एक प्रभाव है। तो जब तक मन इस संसार में अपने को सुखी मानेगा, इन वस्तुओं से मैं ठीक हूं, या अपने को समझदार मानेगा, मैं बहुत विज्ञान पढ़ा हूं, ये वो मैं ठीक हूं, इसको सत्वगुण कहते हैं। और रजोगुण का अर्थ है कि विषयों की लालसा बहुत अपार हो, जिसके मन में विषयों की लालसा बनी हुई है, और तमोगुण का अर्थ है कि जिसमें लोभ और क्रोध है, बहुत क्रोध है, हिंसा, काम विकार आदि, तो इसको तमोगुण कहते। तो जब तक मन विषय भोग की लालसा से या क्रोध अहंकार आदि से और सुख की भावना से, मुझे क्या कमी है, संसार में सब सुख है, मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, इस तरह के भावों से जब तक मन विद्ध रहता है तो वह कर्म करता रहता है, विविध कर्म करेगा, कभी सत्वगुणी कर्म करेगा, कभी रजोगुणी कर्म करेगा, कभी कभी सत्वगुण कर्म भी जीव करने लगता है। मनुष्य जीव मतलब, मेरा जीव से मतलब मनुष्य से है, कभी तीर्थाटन करेगा, कभी जग करेगा, कभी पूजा करेगा, तो सतगुण कर्म कर्म लगता है। और रजोगुण कर्म के सारी दुकानें जो भी हैं सब रजोगुण तो प्रकट ही है, खाना जाना घूमना ये चाहिए वो चाहिए, और तमोगुण कर्म जुआ खेलना, सो जाना बिना मतलब के 10-12 बजे तक, वो भी कर्म करना, क्रोध बस किसी की हिंसा कर देना, मारना ये करना वो करना, सब कुछ लपड़ाही करना, वो तो करता रहता है, तो इसका प्रभाव पड़ता रहता है। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि निरंकुश कहने अर्थ है अंकुशहीन हाथी की तरह एक काम करता रहता है, बहुत बलवान रास्ता। भगवान ने कहा है भागवत के एकादश स्कंध में कि सबसे बड़ा बलवान व्यक्ति है मन, अवंतिका के ब्राह्मण के मुख से कहना है जो मन को जीत लिया वही बलवान है, वो सबसे भारी वीर मन है, मत देता है इंद्रियों को, जो इसको मन कर देता है सारा शरीर उसके अनुसार जाना जाता है। तो कहता है आज सके तुम्हें सिनेमा में चलना है, तो चलना है चाहे नरक में गिरना पड़े या लोक लज्जा जाए या स्वजन रंज हो, लेकिन चलना है, तो मन कर दिया तो चलना, मन नहीं किया तब दूसरा कोई फोर्स नहीं कर सकता, मन के अनुसार ही इंद्रियां काम कर रही हैं। मन कहता है तब आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ काम करता है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 ज्ञान इंद्रिया है स्पर्श इंद्रिया, और इस स्पर्श इंद्रिया को भगवान ने नाक से सीख तक सारे शरीर में मर दिया, ये इंद्रिया सब जगह सेंसेशन को ज्ञान प्राप्त होता है, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम और सब सब पूरा शरीर इस इंद्रिय से मढ़ा गया है, इस तरह से फीट कहीं भी छुइए पता लगता है, कहीं कांटा चुभाइए कुछ भी पता लगता है पूरे शरीर में, और नासिका से गंध का पता लगता है, आंख से रूप का पता लगता है, कान से शब्द का, और रसनेन्द्रिय से रस का, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, और हाथ वाक बोली बोलना इंद्रिया कर्म इंद्रिया बोलना, और हाथ जीभ और पैर और शिष्य को दा, ये 5 है कर्म इंद्रिया, इनके द्वारा मन काम करता रहता है। स्ववासनात्मा विषय परत्व गुण प्रवाह विकृत शोधात्मा विभ्रत पथन नाम भी रूप थेपम अंतर बहिष्टम च पुरस्तम होती। सावधानी के साथ विषय को समझने का प्रयास करें, इस तरह से धर्म या अधर्म यह मन करता रहता है, और उसी धर्म या अधर्म पूर्वक कर्मों से आत्मा के लिए विविध देह की सृष्टि मन करता है। आप पर कोई असर नहीं हुआ, न विक्रिया विश्व सुयुग सखस्य साम्य ने देता भी मत स्थवाती मद्रिक विमान महाविमान स्वकृताधिनाद्रे नक्षंत दूरागत सोल पाणी। मैं जानता हूं तो क्या सुख आप पा रहे हैं, आपका मन तो कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए आप मेरे आक्षेप में बचनों से दुखी नहीं हुए, क्योंकि बीता भी मत्ती आपकी शरीर में अहम बुद्धि बीत गई है नहीं बीत अभिमत्ति शरीर में अहम बुद्धि आपकी है नहीं, ऐसा है इसको बता रहे हैं वासनात्मा। वासनात्मा आत्मा का अर्थ स्वभाव या उपाधि, यह वासना से भरा हुआ है मन, वासना का अर्थ होता है लिप्सा प्रगाढ़ इच्छा, मन में विषयों की इच्छा भरी रहती है, और कर्म में यही कारण है मूल, जब तक किसी को किसी वस्तु की इच्छा नहीं होगी गाढ़ लालसा नहीं होगी तब तक वो कर्म नहीं करेगा। वासनात्मा वासना भरी रहती है मन में, विषयों पर रखता और इसके साथ ही साथ संसारिक रूप रस आदि में यह उपरक्त रहता है। उपरक्त रक्त का अर्थ है रंगाया हुआ लाल, और उपरक्त का अर्थ पूरा पूरा विषयों में रंगा रहता है मन। जैसे सफेद कपड़े पर रंग डाल दिया जाए तो उस पर रंग दिखाई पड़ेगा, ऐसे ही मन जो है हमेशा विषयों से उपरक्त रहता है, विषयों का प्रभाव रहता है। जो सुनता है उससे प्रभावित होता है, कि कोई रूप दिखता है तो उस रूप से मन प्रभावित हो जाता है, उस पर वो छींटे पड़ जाते हैं, तत्काल पड़ेंगे, आत्मा को पता चले या ना चले। शब्द सुनता है तो उधर आकर्षण होता है, यह है उपरक्त विषयोपरक्त। विषयों में यह लगा रहता है और विषय इस पर लगे रहते हैं, अर्थ है। और गुण प्रवाह हो, गुण प्रवाह का अर्थ है कि प्रकृति के पदार्थों द्वारा इधर से उधर चालित होता है प्रवाह। जैसे जल की धारा एक जगह नहीं रहती, बहती रहती है, ऐसे ही मन विविध वस्तुओं में जाता रहता है। अब यह पसंद करेगा तो तुरंत वह पसंद करेगा, यहां से वहां भागता रहता है। ध्यान करने के लिए जो भी लोग बैठते हैं फिर भी उनका मन इधर उधर भागता है, गुणों में भाग जाता है। गुणों मतलब प्राकृतिक पदार्थों में, खासकर के रूप रस गंध आदि शब्द में वो भाग जाता है। वो आंख बंद करके ध्यान आदमी करता है लेकिन मन जाकर के कहीं ना कहीं दूसरा रूप देखने लगता है। वो आंख बंद करता है विष्णु का रूप देखने के लिए, लेकिन मन कहीं ना कहीं घूमता रहता। हमारे यहां की एक छोटी सी घटना है, एक लड़का एक स्कूल में पढ़ता था, माध्यमिक विद्यालय, तो शिक्षक पढ़ा रहे थे और वो ऐसे मुख ऊपर किया था, वो शिक्षक तो देख नहीं रहा था। जब शिक्षक आए स्कूल में क्लास में तो सब लड़के खड़े हो गए, वो खड़ा नहीं हुआ, वो ऐसे तो उसको समाधि लग गई थी वास्तव, वो ऐसे बैठा था। तो शिक्षक पूछे, खड़ा हो, उसका जगनारायण नाम, जगनारायण राय, चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा हो। वो तो खड़ा हो गया बेचारा। तो शिक्षक ने पूछा कि क्या सोच रहे हो, तुम्हारा मन कहाँ गया था? तो बिल्कुल सत्य बोला, कहा कि गुरु जी, भोजपुरी में बोला, मैं उसको हिंदी में कह रहा हूं, वो कहा गुरु जी चाकू हमारा नदी में छूट गया है, मैं अपना कुर्ता धोने गया, चाकू रखा था तो निकाल कर बालू पर रख दिया और कपड़ा धो करके आया, वही भूल गया, वही छूट गया है, तो उसी का चिंतन कर रहा है। इधर पढ़ाई चल रही है, शिक्षक के आने पर भी उसको पता नहीं चला, इतना चाकू में समाधि लग गई। इस तरह से मन कहीं भी हो, यहां तक कि मंदिर में रहकर भी हो सकता है कि अपने घर भाग गया। इसको प्रवाह कहते हैं, वाह का अर्थ है वहन करना, दौड़ना, प्रकर्ष से वाह भागता रहता, बहुत फोर्स से भागता। इसको कोई आरक्षण या टिकट आने की जरूरत नहीं भागने की। क्षण भर में अमेरिका, दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया और इधर बॉम्बे की गली गली में क्षण भर में घूम करके आ सकता है, फिर जा सकता है। इसको गुण प्रवाह होता है, पसंद आ जानी चाहिए इसको कोई बात, वहां पहुंचते देर नहीं लगती है। पहुंच जाता है तुरंत, आत्मा से कोई परमिशन नहीं लेता, पूछताछ नहीं, बल्कि आत्मा इसके अधीन होकर के चलता है। इतना चालू है मान, यही बताया गया। तो गुण प्रवाह प्रकृति के पदार्थों में भागता रहता है और विकृत होता रहता है। विकृत का अर्थ है विविध प्रकार से ट्रांसफॉर्म होता रहता है मन, एक जैसा नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहा है मन, घूम रहा है शरीर के साथ, और कोई कुछ अपमान कर दिया तो ही बहुत क्रोध से तनतना हो जाएगा, मन क्रोधित हो जाता है। इसको कहते हैं विकृति, परिणामी दूसरा रूप हो जाता है। जब क्रोध हो जाता है मन में तो मन का दूसरा रूप हो जाता है, और यही मन कुछ देर के बाद हो सकता है इसमें काम आ जाए तो इसका दूसरा रूप हो जाता है। और कभी लोभ आ जाता है तो अपने काम रूप में वो जोड़ता घटाता रहता है, सोचता रहता है कैसे ये रुपया आएगा, कैसे ये होगा वो होगा, इसको विकृत कहते हैं। कभी मोह छा जाता है उसके भीतर, हम मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा मैं यह, इसको मोह कहते हैं, भ्रम। और इसी तरह के अनेक विकार इसमें उत्पन्न होते रहते हैं, उन विकारों के अनुसार ही होता रहता है, इसलिए इसको विकृत कह रहे हैं, विकृत होता रहता है, एक ही समान नहीं रहता। आप देखते हैं दुनिया में पत्थर रखा जाए तो पत्थर पत्थर जैसा है, लेकिन मन एक समान नहीं रहता, ये परिणाम ही है, बहुत बहुत रूप बदलता रहता है। किसी को प्रणाम करता है, किसी को कुछ देता है तो किसी को तमाचा चला देता है। मन सब करता है, किसी से झगड़ा करता है तो किसी से प्रेम पत्र लिखता है, इस तरह का ये मार्ग। मन की चाल को समझना होगा वास्तव में, वासनात्मा देह को यही नचा रहा है, क्योंकि वासनात्मा है। और इसका कारण क्या है कि यह विकृत होता रहता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता रहता है कि विविध विषयों में अनुरक्त रहता है, जैसा विषय पाएगा वैसा विकार होगा इसमें, है ना। अगर अभी हम लोग बैठे हैं और यहां पर अकस्मात एक सांप आ जाए तो मन तुरंत भयभीत हो जाएगा, हयाकार हो जाएगा, एकदम थर थर कांपने लगेगा शरीर, और मन के कांपते ही शरीर कांपने लगेगा, बारिश से आवाज होगी, भाग 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 भाग, मन तुरंत विकृत हो जाता है। या कोई हमारे विपरीत कर दिया तो क्रोध हो जाएगा,